आ गए हैं। आप जिस वक्त अपने रिन्यूअल पे आओ, और आप मार्ट भाई आप खुद देख लें, एवरीबडी हेयर इज अ होम ओनर, आपकी मॉर्गेज 3 साल पहले हुई थी या 2 पॉइंट समथिंग, 3.1, 3.2 पे,
सही।
आज आपका रिन्यूअल आएगा 6.25 पे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल तो हो गया ना। तो जहां पे आप 3,000 दे रहे थे वहां पे आप 6,000 दोगे, तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितनी पॉकेट स्क्वीज होगी। सो इसके लिए जो आप करो, टॉक टू अ प्रोफेशनल ब्रोकर, टॉक टू अ प्रोफेशनल मॉर्गेज ब्रोकर और अ मॉर्गेज एजेंट अगर आपका रिन्यूअल आ रहा है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बात करना आप शुरू करो, ये नहीं करो कि बिल्कुल एंड टाइम पे, हाँ जी बैंक की तरफ से आ गया, मैंने साइन करके भेज दिया, ठीक है, बैंक वाला आ गया। मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करता हूं, आपको बैंक का रिन्यूअल आता है, आप उसको अपने पास रखिए, शॉप अराउंड कीजिए, आपका हक बनता है, आपका फर्ज है। अगर $200, $100 भी आपका महीने का बचता है, एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर सेविंग $1200, एट द एंड ऑफ टू ईयर्स यू आर सेविंग $2400, एट द एंड ऑफ फाइव ईयर यू आर सेविंग योरसेल्फ $6000। तो क्यों ना किया जाए, आपकी हक हलाल की कमाई है। नंबर दो, इतना आपकी डेट यूटिलाइजेशन हुई भी, आपके क्रेडिट कार्ड 4-5 आपके डिफरेंट बिल्स इकट्ठे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा कीजिए। जब एक दफा मॉर्गेज का रिन्यूअल आ रहा है तो उसमें अगर हो सकता है तो वो उसमें ऐड करवाइए, एंड अपना एक मॉर्गेज, अपना बिल घर का एक कीजिए, जो पेमेंट जाती है वो सिर्फ एक जाए। यू सी, ये क्रेडिट कार्ड तो अब मैं इसको क्या बोलूं, लेकिन ये तो अब ऐसी चीज है कि ये तो यहां पर रहते हुए इस सिस्टम ने हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
तो
हम तो अब ऑपरेट ही नहीं कर सकते, हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते विदाउट क्रेडिट कार्ड। तो या तो अपने क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे उस पर थोड़ा सा हाथ अपना रखिए कि डू नॉट 50% से ज्यादा क्रेडिट मत यूज कीजिए। लेकिन अगेन, वंस अगेन, अभी जो एनवायरमेंट है उसमें 50% लोग जो सुन रहे होंगे वो इस बात पर जरूर, आई एम श्योर दे आर स्माइलिंग अबाउट इट,
सही,
बिकॉज दैट थिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपसे करनी थी, टू एक्चुअली, नंबर वन, कि जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि फिक्स रेट्स आर ऑन द फॉल, फिक्स रेट्स नीचे आ रहे हैं, डिक्रीज आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ कपल ऑफ वीक्स फिक्स रेट्स नीचे आ जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है, बिकॉज उनका जो रिलेशन है वो बॉन्ड यील्ड के साथ होता है, तो दे आर ड्रॉपिंग, फिक्स रेट्स विल बी ड्रॉपिंग इंशाल्लाह,
सही।
तो अगर आपकी अगेन मॉर्गेज आ रही है, आप वेरिएबल में हो, आप फंसे हुए हो, रेट्स ऊपर गए हुए हैं, तो अगेन बात कीजिए, ऑप्शन से तो बात करने पे कुछ नहीं जाता। नंबर टू एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अभी भी कल परसों भी पार्लियामेंट में भी इस बार पे बात हुई अबाउट मॉर्गेज फ्रॉड,
सही।
आई थिंक सबको पता है इस बात का कि मॉर्गेज फ्रॉड एक बहुत बड़ा कल्प्रेट है हमारी मॉर्गेजेस की दुनिया में, कनाडा में। इसके ऊपर बहुत अब हाई लेवल पे बात हो रही है गवर्नमेंट की एंड सीआरए की, कि इन सबको ज्वाइन कर दिया जाए एंड सीआरए सब कुछ करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। सो प्लीज, मैं जितने भी सुनने वाले हैं बहन भाई, अगर आपको कोई इस तरह का कांटेक्ट करता है और अगर कोई बोलता है कि हाँ जी आप मुझे पैसे दे दें और मैं सब कुछ करा दूंगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन देयर। जितने भी बैंक्स हैं, वेदर प्राइम बैंक्स हैं, वेदर ऑल्टरनेटिव बैंक्स हैं, इन सब के पास हर तरह की इनकम के लिए प्रोग्राम होते हैं,
सही।
इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा तो वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और आपके साथ ज्यादा ज्यादती कर रहा है। जी,
अकाल मॉर्गेजेस के जनाब अली यजानी साहब, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी प्रोफेशनल पर्सन। कोई भी सवाल हो, इवन इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड इन बाइंग हाउसेज अभी आज की मार्केट में, तो इससे पहले कि आप ऑफर डालें, जनाब यजानी साहब से एक दफा मुलाकात करके इनसे बातचीत कर लें एंड सी व्हाट इज गुड फॉर यू। ही इज ओनली गोइंग टू एडवाइज यू, विच डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। अली यजदानी साहब अकाल मॉर्गेज से मुंसलिक, 6475109494, 6475109494 इनका फोन नंबर है। यजदानी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका,
थैंक यू वेरी मच भाई, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।
और क्विकली टॉप ऑफ द आवर, और उसके बाद आपको लेकर पाकिस्तान, और मुझे तो दफ्तर से निकाल देने का पैगाम दिया गया और फैज बिलाना मेरे साथ होंगे। टॉप ऑफ द आवर प्लीज।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Pind sunida, pind sunida, bellani. Lagaya mathiyai wala, albiyan te melani. Barfiya pakode, gajre le chat khaunge. Jande jande gift ta te lucky draw vi paunge. Aye aye.
8 नवंबर तो 12 नवंबर तक समोसा स्वीट फैक्ट्री दी तीनों लोकेशन दे मठियाई मेले ते आओ पर वड्डा मठियाई मेला ओनली एट वन लोकेशन 1850 एल्बियन रोड ओटोबिको 416-213-1165।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का कम्युनिटी ग्रांट प्रोग्राम एडवांस ब्रैम्पटन फंड दरखास्तों के लिए खुला है और दरखास्त देने के लिए अभी भी वक्त है। ब्रैम्पटन में गैर मुनाफा बख्श और खैराती इदारे दो फंडिंग स्ट्रीम्स के जरिए फंडिंग के लिए दरखास्त दे सकते हैं। हम इस मुनफरिद और काबिल कदर किरदार को तस्लीम करते हैं जो गैर मुनाफा बख्श शोबा कम्युनिटी की जरूरियात को पूरा करने वाले प्रोजेक्ट और खिदमात की फराहमी में अदा करता है। मजीद जाने और आज ही brampton.ca/abf पर जाकर ऑनलाइन दरखास्त दें।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको 12 नवंबर को सस्को सेंटेनियल जो कि 11333 ब्रैम्बी रोड इन ब्रैम्पटन पर फर्स्ट एवर दिवाली मेले पर इनवाइट करता है। मुकामी और बैन अल-अक़वामी फनकारों की परफॉर्मेंसेस के साथ साथ रोशनियों के त्यौहार का जश्न मनाएं, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज में हिस्सा लें, वेंडर के मजेदार खाने और शहर में चलाए जाने वाले आतिशबाजी के सबसे बड़े मंजर को एंजॉय करें। प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात के लिए विजिट करें www.brampton.ca/diwali।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
Mahal in Rexdale. For more information, you can call 416-679-9991.
साहब प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करूँगी। अगले हम चाहते हैं कि तमाम की तमाम न्यूज़ को पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल को देखते हुए उसका तज्जिया पेश करें जनाब फ़ियाज़ विलाना साहब। विलाना साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया फॉर बींग विद अस सर।
अस्सलाम वालेकुम आपका तमाम प्रोग्राम देखने वालों को। मेरी तरफ से
मैन, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे।
एक मीटिंग थी, मीटिंग से भी निकला हूं।
मैं तो फटाफट हेडफोन लगाने की कोशिश की, मैं क्या आज क्या हुआ फयाज भाई, यू आर लुकिंग सो हैंडसम माशाल्लाह, चश्मे बद्दू चश्मे।
मीटिंग आपको पता है वर्क फ्रॉम होम में बचत होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मीटिंग होती है उसमें फिर आपको प्रॉपर।
एग्जैक्टली, यू आर लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए फयाज भाई, मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा दरमियान में मुखिल हूँ, क्योंकि आप बेहतर तौर पर तजिया कर सकते हैं आज पाकिस्तान की सूरत। मैं आपको एक सिर्फ एक फीडबैक देना चाहती हूँ। मेरी ज़ाती तौर पर आज मुलाकात और इसके फौरन बाद शाजिया साहब आएंगी, और शाजिया साहब के फौरन बाद न्यूज़, न्यूज़ के बाद क्रिकेट, और क्रिकेट के फौरन बाद हम आपको लेकर के चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मीडिया रेडिशन ऑफिसर जनाब रऊफ हसन साहब मेरे साथ होंगे। बड़ी अच्छे तरीके से उनसे बात हुई, आप उनके आर्टिकल्स को द न्यूज़ में पढ़ते भी हैं, तो आप ज़रा पाकिस्तान के पूरे तज्जिए को, यू हैव अगर आप न्यूज़ को इन अ ग्लांस कवर करें तो प्लीज़ डू कवर इट, ताकि मेरी इंटरफेरेंस ना हो और आप उसको पूरी न्यूज़ को कवर कर लें।
आपने रऊफ हसन साहब की बात की, रऊफ हसन साहब का प्रोग्राम तकरीबन रेगुलरली हमारे पास आ रहा है, आप उन्हें लेती हैं अक्सर स्काइप पे और फोन पे।
जी सर,
बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये रऊफ हसन साहब वो हैं जो फवाद हसन फवाद जो इस वक्त निजकारी के मिनिस्टर हैं, उससे पहले नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, और मियां नवाज शरीफ के उनके जाती कई तीन लोगों में से हैं, लेकिन ये टोटली मुखालिफ थे उनके शुरू से, और ये शुरू से ही पीटीआई और इमरान खान के साथ हैं। मुश्किल वक्त में जब हुकूमत आ गई उनकी, तो लोग और शहजाद अकबर जैसे लोग और जुल्फी जैसे लोग, जुल्फकार जुल्फी जैसे लोग जो है वो उनके पास, जुल्फी बुखारी जैसे लोग इमरान खान के करीब आ गए, और रऊफ हसन क्योंकि खुशामद पसंद नहीं है तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो गए। अब चूंकि इमरान खान पे मुश्किल वक्त है तो वो खुद आए हैं आगे, और उन्होंने इस वक्त पार्टी का तकरीबन इतलात का, इन्फॉर्मेशन का शोबा सारा संभाला हुआ है। ही इज अ थारो जेंटलमैन, नाइस आदमी है। मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है पीटीवी पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम इकट्ठे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम देखते हैं जो अब आपका हमारा प्रोग्राम देखने वाले हैं। मैं उन्हें कहूंगा कि अभी जिस तरह आपने बताया कि स्केड्यूल्ड है उनका आज हमारे साथ ऑन एयर होना, तो जरूर वो प्रोग्राम हमारा लोग देखें, क्योंकि वो पीटीआई की रियल वॉइस वो है। बाकी शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठ के बहुत वीलॉग कर रहे हैं और
सर, वो दबो रहे हैं पीटीआई को, दबाने वाले हैं।
डिफरेंट शहबाज गिल एक डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट एटमोस्फियर में, डिफरेंट एक उससे गुजर के कर रहे हैं, और उनमें एक रिवेंज की भी एक होगी, कुदरती बात है, जाहिर है वो सफर किया, उन्होंने जेल में रहे हैं और उनपे मुख्तलिफ इल्जाम भी लगे हैं, लेकिन वो एक आजाद फिजा में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन रऊफ हसन साहब पाकिस्तान में लाहौर में बैठ के और जमान पार्क में बैठ के और इस पिंडी में अपने घर में बैठ के जो बात कर रहे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। जी अब आ गए आप कह रही थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो की। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत दिलचस्प हो गया है। हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखने वालों को मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल मायूस ना हो, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, इस ब्राइट फ्यूचर के दौरान आप लोगों ने होशो आवाज नहीं खोने, जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम या कल श्रीलंका की क्रिकेट टीम अपने होशो आवाज खो बैठी थी, आपने इस पे अपने होशो आवाज कायम रखने हैं, और आपने इनकी चालें देखनी है हमारे सियासतदानों की, कौन सी सियासतदान क्या चाल चल रहा है। क्योंकि ये चालें चलते तो एक दूसरे को नीचा करने के लिए हैं, अल्टीमेटली इनकी चालें हमें, हम आवाम को, हम आम आदमियों को नीचे गिराने की चालें हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई बंदा चाल चल रहा हो तो ये कैसे हो सकता है कि आप अपने आप को लाताल्लुक कर लें और आप कहें जी कि हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको दिलचस्पी अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी, और इन दिनों, आने वाले दिनों में आप मजीद ऐसे तमाम टेलीविजन चैनल से, ऐसे तमाम यूट्यूब व्लॉगर से, ऐसे तमाम अखबारात से, ऐसे तमाम वेबसाइट से जहां आप समझते हैं कि आपको कदरे न्यूट्रल खबरें मिलती हैं, उनसे जुड़े रहें। फॉर एग्जाम्पल, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे, पहले तो वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उन्हें बहुत सारी गारंटीज वारंटीज चाहिए थी, उन्हें हर किस्म की गारंटीज दी गई और बिल आखिर वो पाकिस्तान पहुंच गए। जब लाहौर पहुंचे और वहां जिस तरह का मजमा इकट्ठा किया गया, वो खुश नहीं थे उस मजमे से, और फिर जो रिपोर्ट्स आई उस मजमे की, जो गैदरिंग थी, जो वहां ऑडियंस थी, अटेंडेंस थी, उसके लोगों ने इंटरव्यूज किए, उससे भी उन्हें, उनके बहुत सारे गिले शिकवे थे कि उस तरह का मेरा इस्तकबाल नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। फिर बाद अजां जब उन्होंने कोशिश की इधर उधर मुख्तलिफ जलसे या गैदरिंग्स करने की, हर तरफ से उन्हें नो 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 की आवाजें आ रही थी। उनके इंतहाई करीबी साथी ख्वाजा आसिफ जैसे, अहसन इकबाल जैसे, ख्वाजा साद रफीक जैसे, राना सनाउल्ला जैसे, इनमें से कोई एक भी अपने शहर में मियां साहब को ले जाके कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सका। फिर मियां साहब ने फैसला किया कि अब हम ड्राइंग रूम की सियासत में चलते हैं, अब हम ड्राइंग रूम में मीटिंग मीटिंग खेलते हैं। अब ड्राइंग रूम में मीटिंग मीटिंग खेलने में जब उन्होंने कोशिश की तो उन्हें इस वक्त तक बहुत सारी सियासी जमातों की तरफ से झंडी कराई जा चुकी है। ये बातें मंजरे आम पे इसलिए नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान का तमाम मीडिया तो तकरीबन उन्होंने खरीद लिया है, या वो अंडर इन्फ्लुएंस है हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, हमारे पिंडी बॉयज के अंडर इन्फ्लुएंस है, या मियां साहब ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, खरीदा हुआ है, क्योंकि मियां साहब के बारे में तो मशहूर है ना, वो खाता है तो खिलाता भी है, तो मियां साहब जब खिलाने पे आ जाएं तो फिर हर कोई उनके साथ आमीन करके हंसते खेलते चला जाता है। और हमारे दोस्तों को जो रेगुलर प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं या वैसे मीडिया पे जिनकी नजर है, उन्हें पता है कि हमारी जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं, किसी ने क्रिकेट ग्राउंड पे कब्जा किया हुआ है और वहां से पैसे कमा रहा है, किसी ने लाहौर में पेट्रोल पंप 6,000 रुपया पर मंथ के रेंट पे लिए हुए थे और वहां से वो कमा रहे थे, किसी ने कहीं कोई अपना अम्यूजमेंट पार्क और अम्यूजमेंट लिए हुए थे, इस तरह के बड़े बड़े 25-25 एकड़ की इस्लामाबाद जैसे जगह पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे 99 ईयर्स पे बड़े सस्ते दामों। अब उन लोगों ने कहीं ना कहीं से तो नमक हलाली करनी है मियां साहब की, इसलिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या तो मियां साहब की पॉकेट में है या वो पिंडी वालों की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस है। और इस वक्त इन दिनों आखिरी इतलात आने तक मियां साहब और पिंडी बॉयज एक ही पेज पे हैं, पता नहीं ये पेज कब फटता है, लेकिन चांसेस यही है कि ये फटेगा, अभी फटे या इक्तदार में आने के बाद फटे, फटना इसमें जरूर है क्योंकि मियां साहब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब मियां साहब ने जब मीटिंग शुरू की तो मीटिंग्स में मियां साहब को नाकामी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मियां साहब ने कोशिश की कि जहांगीर तरीन साहब उनके साथ कहीं आके मीटिंग कर लें, जहांगीर तरीन साहब मियां साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मियां साहब, जहांगीर तरीन साहब और आफ्ताब शेरपाओ साहब जो केपीके में एक बड़ी पार्टी है उनकी, पाकिस्तान कौमी पार्टी, और उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वहां, वो कभी पीपल्स पार्टी के वहां चीफ मिनिस्टर रहे हैं और चीफ पीपल्स पार्टी के वहां प्रोविंशियल हेड रहे हैं, उनका असर रसूख आज भी मौजूद है, और पिछली असेंबली में भी उनके साहबजादे मौजूद थे, वो खुद भी मौजूद थे, प्रोवेंशियल असेंबली में भी उनके 5-7 लोग एमपीए बन जाते हैं, वो मियां साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि मियां साहब के साथ इलहाक करने का मतलब ये है कि जितने 16 महीने के शहबाज शरीफ साहब के और इसहाक डार साहब की कारकर्दगी थी वो अपने गले लेने वाली बात है, इसलिए हम अभी आपके साथ नहीं बैठ सकते। सब यही कह रहे हैं मियां साहब को कि मियां साहब इलेक्शन में जाएं, हम अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हम आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले इंतखाबी मुहिम में हम स्टेज पे आपके हाथ में आपका हाथ पकड़ के हवा में नहीं लहरा सकते, क्योंकि आपका हाथ पकड़ने का मतलब यह है कि वोट हमसे दूर भाग जाएगा। इसलिए मियां साहब के साथ ड्राइंग रूम की सियासत में भी हाथ हो रहा है, वहां भी इनके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, एमक्यूएम क्योंकि उनके सरप्रस्त हमारे पिंडी वाले हैं, तो एमक्यूएम वालों को क्योंकि वहां उनको पहले ही कट टू साइज कर दिया गया था, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप है, एक सत्तार फारूक सत्तार साहब का ग्रुप है, एक वहां कमाल मुस्तफा साहब का ग्रुप था पाकिस्तान जमीन पार्टी वालों का, वो पहले ही छोटे छोटे टोटों में जब बट गए थे तो उनकी ताकत खत्म हो गई थी। अब उन्हें तीनों को एक जगह बिठाया गया है, ऊपर से उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि मियां साहब आ रहे हैं, आपने मियां साहब को रिसीव करना है, मियां साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और आपने मियां साहब के साथ इत्तेहाद का ऐलान करना है। एमक्यूएम ने तो कर लिया। अब 13 नवंबर को मियां साहब जा रहे हैं क्वेटा और कोशिश कर रहे हैं कि वहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले या अख्तर मेंगल साहब उनके साथ बैठे तो इत्तेहाद का ऐलान करें, उनमें से भी कोई नहीं मान रहा। हाँ, वहां आजाद जो 2-3 जीते थे लोग वो अभी तक एग्री हुए हैं कि हम मियां साहब के साथ स्टेज पे बैठेंगे, मियां साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मियां साहब के साथ इत्तेहाद और इलाहाक का ऐलान करेंगे। लेकिन बड़ी पार्टियों में से अभी तक कोई शहबाज शरीफ और इसहाक डार के 16 महीने के गुनाह अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह पंजाब में जहां मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन बैठने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की पार्टी के सदर जो है अलीम खान, वो बहुत तावले हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ जाएं और मियां साहब के साथ स्टेज पे भी चढ़ जाएं और इमरान खान की मुखालफत करके हम वोट लें। लेकिन जहांगीर तरीन उन्हें ये समझा रहे हैं कि इमरान खान की मुखालफत से वोट नहीं मिलना, हमें पीडीएम की मुखालफत से वोट मिलना है, इमरान खान की मुखालफत से वोट नहीं मिलना, बल्कि हो सके तो हम कहीं ना कहीं अपना सॉफ्ट कॉर्नर शो करें इमरान खान के लिए। लेकिन क्योंकि अलीम खान साहब इस वक्त इंतहाई रिवेंजफुल हुए हुए हैं, अपना इंतकाम लेना चाहते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनाया था इमरान खान ने, अलीम खान कहते हैं क्या है, मेरी तरफ से कोई नरमी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए तहरीक इस्तेकाम पार्टी के अंदर भी इस वक्त दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जहांगीर तरीन के कुछ दोस्त अब तक आखिरी इतलात आने तक ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई सुलह सफाई हो जाए, कोई इमरान खान हमारे लोगों को एक्सेप्ट कर ले और हमें चंद सीटें दे दें तो शायद हम पीटीआई में वापस चले जाएं, या हमारी पार्टी को के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें इमरान खान, ताकि हमें शहबाज शरीफ और इसहाक डार के 16 महीने के गुनाह अपने सर ना लेने पड़े। इसलिए मियां साहब के लिए आने वाले दिनों में जूं जूं वो आगे बढ़ेंगे, मजीद दिलचस्पी के अवामिल शामिल होते रहेंगे, हमारे जो प्रोग्राम देखने और सुनने वाले हैं उन्हें हम कहेंगे कि आप प्लीज जुड़े रहें। जी
बहुत शुक्रिया। मैं जो बाप पार्टी के अख्तर मेंगल ने तो सर बड़ा कमाल का बयान दे दिया है, उन्होंने तो मतलब कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि आज हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम नए इलाक में चले जाएं, इससे पहले पीडीएम जो बनाई गई थी कहा कुछ और गया था। और सर वो तो बड़े बड़े उन्होंने हार्ड फैक्ट्स बताए,
उन्होंने पूरा जितना पीडीएम की बुनियाद रखने के पहले दिन से लेकर अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने तक, बल्कि उसके बाद तक के जितने अवामिल थे, जितनी कारगुजारी थी इनकी, उन्होंने एक एक खोल के सामने रख दिया है। अगर अख्तर मेंगल की आवाज ना हो और सिर्फ वो कहीं बंदा तहरीर पढ़ रहा हो तो लगता है ये इमरान खान की तहरीर है। वो बोल अख्तर मेंगल रहे थे लेकिन ख्यालात और आवाज अख्तर मेंगल की थी, सोच इमरान खान की थी। वो बात थी जो इमरान खान बताते रहे हैं अपने वोटर्स को और पाकिस्तान के अवाम को कि ये हो रहा है आपके साथ। वो सारी बातों पे उन्होंने मोरे तस्दीक शब्द की है अख्तर मेंगल ने। शायद उस वजह से अख्तर मेंगल की थोड़ी सी रिस्पेक्ट पीटीआई वालों के पास ज्यादा बढ़ गई होगी। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की पीठ में छुरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नुकसान उन्होंने काफी उन्हें पहुंचा दिया है। एक और बहुत दिलचस्प वाकया हुआ है पिछले कल परसों के, मोहसिन नकवी साहब का इदारा है CP24, एक टेलीविजन चैनल है पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम मीडिया है चैनल 24 उनका चैनल है। फिर उनका लाहौर रंग और लाहौर के लोकल और फैसलाबाद का लोकल, और एक उन्होंने यूके में C44, C42, लाहौर का नंबर है जो डायलिंग कोड है उसके नंबर से उन्होंने लाहौर का भी एक रखा हुआ है चैनल, उनके अच्छे चैनल चल रहे हैं। फिर हुकूमत में आने के बाद क्यों ना चलें, जब से वो पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी उनकी हुकूमत उनके चैनल्स को अरबों करोड़ों अरबों के इश्तहार मिले थे और अब तो हुकूमत उनकी अपनी है। अब तो अपनी सास और ससुर के वहां अपनी ससुरालियों के कब्रिस्तान में फातिहा के लिए भी जाते हैं तो वहां भी रेड कारपेट बिछा के जाते हैं, इंतहाई अफसोस का मकाम है। मोहसिन नकवी साहब के इदारे में एक रवायत है कि वो हर इलेक्शन से पहले अपने इदारे में इलेक्शन करवाते थे, बाकायदा बैलेट पेपर बनता है, उस पर बाकायदा तीर बल्ला साइकिल शेर सारे इंतखाबी निशान उस पर दिए जाते हैं और स्टाफ को कहा जाता है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वोट उनको पर्ची जारी होती है, उनको वोट दिया जाता है, वो पीछे पर्दे में जाके अपना वोट डालते हैं और फिर उसके बाद उसमें बॉक्स में डाल देते हैं। ये इन्होंने इस दफा फिर इलेक्शन कराया है मोहसिन नकवी साहब ने परसों अपने इदारे में, और फिर वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सलीम बुखारी साहब, जाने पहचाने साफी हैं, उनके बारे में है कि वो मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई नर्म रवैया रखते हैं, कभी उनके बारे में ये था कि वो पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो के लिए नर्म रवैया रखते हैं, इन दिनों वो अपने खाता है तो खिलाता भी है, उनके साल के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नर्म गोशा रखते हैं, पीटीआई की कभी कभी तारीफ करते हैं लेकिन अक्सर उन्हें पीटीआई से नाराजगी होती है इमरान खान से और उनसे, और इमरान खान से नाराजगी क्यों ना हो, ये खुद पता नहीं खाता है या नहीं खाता, दूसरों को नहीं खिलाता। आपको याद होगा सोहेल वड़ाइज उनका इंटरव्यू करने गए तो शायद सोहेल वड़ाइज की जिंदगी का पहला इंटरव्यू था जिसमें वो इंटरव्यू कर रहे थे और इमरान खान अकेला खुद खाना खा रहा था, उसने रस्मन एक दफा पूछा कि खाना खाओगे, सोहेल वड़ाइज ने रस्मन कह दिया कि नहीं मैं तो खा के आया नहीं, तो इमरान खान ने बिल्कुल परवाह नहीं की, वो सामने बैठ के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब सोहेल वड़ाइज सामने बैठ के देख भी रहा है कि ये खाना किस तरह खा रहे हैं और साथ साथ इंटरव्यू भी कर रहा है, तो वो तो इस तरह का कमाल का बंदा है, खुद मजबूरी से उसे खाना पड़ जाए तो खुद ही खाता है, दूसरे को नहीं खिलाता। तो अभी उन्होंने मोहसिन नकवी सलीम बुखारी साहब ने रिजल्ट दो दिन हो गए हैं रोक के रखा हुआ है, क्यों कि वहां रिजल्ट पता चला है कि बहुत ही खौफनाक आ गया है, तीर और साइकिल और शेर के निशान को लोगों ने मोहसिन नकवी साहब के टेलीविजन चैनल्स के स्टाफ ने घास तक नहीं डाली और अक्सरियत बड़ी भारी अक्सरियत में लोगों ने बल्ले के निशान पे थप्पे लगा दिए हैं। इस्लामाबाद का रिजल्ट लीक हुआ है कि इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब के टेलीविजन चैनल में 51 लोग उस दिन हाजिर थे ऑफिस में जिन्होंने वोट कास्ट किया और 51 में से 47 ने बल्ले के निशान पे साइन लगाया, 47 आउट ऑफ 51 इस्लामाबाद से इमरान खान के हक में लोगों ने वोट डाल दिए। लाहौर कराची और बाकी जो उनके ब्यूरोज हैं पिशावर और कोयटा फैसलाबाद उसका रिजल्ट अभी तक रोका हुआ है इन्होंने, रिजल्ट तो इस्लामाबाद का भी अनाउंस नहीं किया लेकिन इस्लामाबाद का लीक हो गया है। अब मोहसिन नकवी साहब इस सोच में पड़े हुए हैं कि अगर मेरे इदारे का ये रिजल्ट बाहर पब्लिक हो गया तो एक तो मैं मियां साहब को जो खाता है और खिलाता भी है उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले जो मेरे सरपरस्त साहिबान हैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं पब्लिक में कल कैसे बाहर निकलूंगा। तो ये ताजा तरीन इतला है जनाब सीपी अपना चैनल 24 और जितने मोहसिन नकवी साहब के टेलीविजन चैनल हैं, ये एक अच्छी रवायत थी उनके ऑफिस में और शायद इस दफा ये अच्छी रवायत भी दम तोड़ जाए। आज ये रिजल्ट भी मुश्किल है सलीम बुखारी साहब अनाउंस करें और आज के बाद शायद उन्होंने कानों को हाथ लगा लेने हैं, आइंदा दोबारा उन्होंने ये अच्छी रवायत जो है इसे जारी रखने की भी कोशिश नहीं करनी। जी
थैंक यू वेरी मच, टाइम ने और इजाजत नहीं दी, मैं तो इसकी चुप ही रही हूँ, मैं तो बहुत सारी चीजें थी पूछने वाली मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं स्टैटिक होगा जरूर स्टैटिक होगा और 5:45 के बाद आप जस्ट डायल अ लोकल नंबर 6478724900, आई प्रॉमिस कि यू विल हैव फुल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब न्यूज माजी जमाल और शाजी साहब लेके आएंगे, उसके बाद क्रिकेट का सेगमेंट होगा और क्रिकेट के सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान के रेनाउंड प्लेयर हमारे साथ होंगे, दैट इज सेमीफाइनल एंड फाइनल के ऊपर पाकिस्तान से। शाजिया जी कौन होगा पाकिस्तान से हमारे साथ?
मोहम्मद इरफान, सिकंदर बख्त।
सिकंदर बख्त, सिकंदर बख्त हमारे साथ होंगे और सेमीफाइनल और फाइनल में हम आपको इंडिया में क्रिकेट के मैदान में लेके जाएंगे। हमारी रिपोर्टिंग डायरेक्टली क्रिकेट के फील्ड से होगी। फैज विलाना साहब आपको बहुत शुक्रिया और आज के प्रोग्राम में तकरीबन 5:30 आप सुन सकेंगे जनाब रऊफ हसन जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीटीआई। विलाना साहब आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और विलाना साहब गुड टू सी यू, आई होप माई इवनिंग विल ऑल्सो।
नहीं मैं आपको याद कराता चलूं, हमारे प्रोग्राम देखने वाले लोग बाकायदा नोट करते हैं, हमारे एक अंसारी साहब हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मिसिसागा में, उन्होंने एक दफा बाकायदा मुझे फोन करके कहा, उन्होंने कहा वलाना साहब आप ऐसे ही ना आप शर्ट चेंज करते हैं ना स्वेटर चेंज करते हैं ना आप कोट चेंज करते हैं, आप रोजाना एक ही ड्रेस में आ जाते हैं, प्लीज प्रॉपर तैयार होकर आया करें। मैंने कहा डज इट मेक एनी डिफरेंस? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है लेकिन आप ड्रेसिंग भी अपनी जो है उसको रेगुलर करें, आप कैजुअल माहौल में घर में बैठे होते हैं जो उसी में आ जाते हैं। मैंने कहा यार मेरे कपड़ों पे ध्यान ना दो, जो मैं बात करता हूँ उस पे ध्यान दो, लेकिन थैंक्स टू अंसारी साहब उनके इसरार की वजह से भी मुझे थोड़ी इस तरफ तवज्जो देनी पड़ी।
मैं सिर्फ बहुत 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 अच्छा लगा। ऑफ कोर्स बाज़ोकात माहौल और हमारा लिबास हमारी सोच को पे असरअंदाज होता ज़रूर है। फैज़ विलाना साहब, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर बात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड प्लीज।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਮਾਮ ਹੀ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਜਾਂ forddealers.ca ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
लॉजी स्टेशन साइड हुन विकना शुरू हो गया है। मिल्टन डाउनटाउन विच तुहाडी वखरी रिहायश जेडी शुरू हुंदी है 487,990 डॉलर च, ते GTA दा सब तो बढ़िया मुल है। दो टावर आली इमारत सेंट्रल पोडियम थानी अंदरूनी ते बाहरली सहूलतां पेश करदी है। मिल्टन गो स्टेशन दे बिल्कुल नाल जुड़िया स्टेशन साइड मिल्टन फ्यूचर मोबिलिटी हब दा नींह पत्थर है, जेड़ा तुहानू आराम नाल तुहाडियां मंजिलां तक पहुंचाएगा। GTA दे उज्जवले भविष्य विच अज निवेश करो। स्टेशन साइट
आतिशबाजी के नए कानून के तहत ब्रैम्पटन में आतिशबाजी के इस्तेमाल, खरीदारी, खारिज होने वाले मादा, डिस्प्ले या फरोख पर सख्ती से पाबंदी है। इसमें तमाम चमकने वाली रोमन मोमबत्तियां, रॉकेट, ग्राउंड स्पिनर्स, फवारे, उड़ने वाले लालटेन, बम धमाके वगैरह शामिल हैं। अमल न करने पर आपको 500 से 1 लाख डॉलर तक फाइन हो सकता है। ब्रैम्पटन के रिहायशी, नए साल की शाम, कैनेडा डे या दिवाली की आतिशबाजी शहर के ज़ेर क़यादत जगहों पर एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिए brampton.ca/fireworks।
ना जी ना, ए सारे पटाके हो जानगे फेल जदों पटाके आउणगे pataka.com तो। सब तो सस्ता होलसेल रेट ते पटाका लैण लई pataka.com। वधेरी जानकारी दे लई कॉल करो 416-828-6008 या फिर 647-615-5234। तुसी इना दी वेबसाइट ते भी विजिट कर सकदे हो pataka.com।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
उर्दू पोस्ट और असगर भट्टी के तावुन से इलामा इकबाल डे सैटरडे नवंबर 11th ठीक शाम 5 बजे से रात 10 बजे। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सैयद तकी आब्दी, फ्री गिफ्ट, सुमरा टिकट्स और बहुत से लकी ड्रॉज। टिकट सिर्फ $40 जिसमें डिनर एपिटाइजर दोनों शामिल। इकबाल डे नवंबर 11th स्टेट बैंक्वेट हॉल। फॉर टिकट्स प्लीज कॉल असगर भट्टी 6478068116 और कुत्सिया हुसैनी 6478594352।
जी साहब, नासरी वेलकम बैक अगेन। एंड 4:28 और 23 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। अकेली न्यूज़ करनी पड़ेगी, न्यूज़ वाली जो है वो तो आ जा ही नहीं है अभी तक। सॉरी, वो आ गई है, मैं देख सकता हूँ उनको, मेकअप कर रही है ज़रा, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 4 कोट लगने पड़ते हैं ना वहाँ पर तो, और हर कोट में बीच में 3-4 मिनट का वक्फा भी चाहिए उनको। अभी मुझसे कहा हमें वक्फा चाहिए होता है, तो ओके साहब वक्फा कर लें जरा, इसके बाद फिर पंखे के सामने खड़ी होंगी वो अपने बालों को इस तरह इधर इधर उधर लेके जाएंगी। आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आप नोट कर लीजिएगा।
پہنچ گئی. ارے پہنچ گئی, میرے سامنے بیٹھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ ملک جی, کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام مجید بھائی. کوئی اگر سکینڈلائز کرانی ہو نا چیزیں, تو آپ کو اور عامر کو ہائر کر لینا چاہیے. یعنی اتنا کوئی آپ دونوں ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اتنا کوئی چیزوں کو آپ سکینڈلائز کرتے ہیں.
بتایا مجھے اس میں ایگزیجریشن کیا تھی.
نہیں, ایگزیجریشن یہ ہے کہ بندہ اگر بوتھی اپنی صرف شیشے میں دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ ڈنگی ہے, آنکھیں ٹیری تو نہیں ہے, ہوا چلنے سے بوتھی جو ہے وہ دوسری طرف تو نہیں چلی گئی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر آپ نے اتنا سکینڈل بنا لیا ہے کہ جی یہ پینٹ ہو رہے ہیں اور چھ چھ لیئرز میں وہ ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں, اور بال ایسے ایسے ہو رہے ہیں, اور بال میرے ایسے ایسے بوے کی طرح اڑ گئے, تو پھر ہم یہاں پہ کیسے بیٹھیں گے؟
میں نہیں کر رہا, میں میری تو آپ کے بیٹے سے اور آپ کے ہسبینڈ سے بڑی اچھی دوستی ہیں. تو وہاں سے شکایت آئی تھی مجھے.
اچھا,
بہت ٹائم.
اچھا, یعنی آپ
ٹائر صاحب تو ایسے تیار ہوتے ہیں.
اچھا جی جی.
اور آپ کے بیٹے,
ظاہر ہے جو بندہ دن میں 10 انڈے کھائے اس نے تو پھر ایسے ہی تھی نا.
اور آپ کے صاحبزادے جو ہیں, ہی ڈزنٹ نیڈ نو میک اپ,
ہی ڈزنٹ
نیڈ نو ہیئر سٹائل, ہی ڈزنٹ نیڈ نو ڈینٹل کلین اپ اور اینتھنگ لائک دیٹ. ساری چیزیں ان کے پاس ہیں نا. پاکستان گئے تھے, وہ سب چیزیں صحیح کرا کے آ گئے اپنے,
کیونکہ جتنے بیوٹی ٹریٹمنٹس اس کے ہوئے ہیں اتنے تو لڑکیوں کے بھی نہیں ہوتے نا ماجد بھائی.
بٹ ہی از لوکنگ گڈ.
جی جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. چلو جی ماجد بھائی, چلو جی چھوڑو, تسی انہاں دیاں اپنے دوستاں دیاں تعریفاں پھر کسی دن کر لینا. ہن اسی کام کر لئیے تھوڑا جہا, کیونکہ ساڈے کول ٹائم نہیں ہے. کیونکہ
پھر کرو جی, بہت بہت ٹائم لے لیتے ہو.
بہت آپ نے ٹائم میرا خراب کر دیا ماجد بھائی, بہت آپ ٹائم خراب کرتے ہو, آپ ساروں میں کرتے ہو, میرا کچھ زیادہ ہی کرتے ہو. اچھا جی, اچھا جناب ہم آپ کو بتائیں جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی اکراز. اکراز آپ کو پتا ہی ہے شریعہ کمپلائنٹ سروسز دیتے ہیں, تو اگر آپ کو ان کی ساری سروسز کے بارے میں جاننا ہے تو اکراز.com پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہی ہے کہ سٹی آف برامپٹن بڑا انتھوزیاسٹ ہے اس کا, کرکٹ کا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے گھر بیچنا نہیں, خریدنا اور سیل کرنا ہے جی, تو پھر آپ جو ہے عارفہ مظفر جی کو کانٹیکٹ کریں, ان کا نمبر ہے 6478986245. چلو جی, اب اپنی خبروں کی طرف جاتے ہیں. آج جو لیبر منسٹر تھے سیمس اوریگن, انہوں نے آج ٹیبل کیا ہے نیا لیبر لیجسلیشن, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پروپوز کر رہے ہیں اینٹی سکیپ پروویژن. یعنی یہ ہوتا تھا, اس کا ذرا ہم آپ کو مطلب سمجھا دیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یونین جو ہے کوئی اس کے ساتھ لوگ مل کے کرتے ہیں, کوئی سٹرائک وغیرہ کرتے ہیں, تو اس کی جگہ پہ سکیب ورکرز, یعنی کہ وہ جو دوسرے ورکرز ہیں ان کو لے کر آ جایا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جو بیچارہ ورکر جو کہ یونین اپنی کے کہنے پہ وہ کرتا ہے یا سٹرائک پہ جاتا ہے, تو اس کو یا تو ہٹا دیا جاتا ہے اور یا پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جی ٹھیک نہیں تھا. تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اگر یونائٹڈ کسی کا سٹینڈ ہے کہ بھئی ان کو اچھے ویجز چاہیے یا اور کوئی ان کو فیسلٹیز چاہیے, تو اس میں اگر انہوں نے سٹرائک کی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا کے آپ جو ہے دوسرا نہ کریں. یہ بل C-58 جو ہے یہ ٹیبل کیا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امپلائر اس کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو $100,000 پر ڈے تک بھی جو ہے ہم فائن کر سکتے ہیں. یہ اصل میں جو کچھ بھی لبرل گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ ان کی ڈیل ہوئی تھی NDP کے ساتھ ارلیئر, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ امینڈ کرنا پڑے گا کینیڈا لیبر کوڈ اینڈ کینیڈا انڈسٹریل ریلیشنز بورڈ ریگولیشن 2012, اور اس میں انہوں نے بین لگایا ہے ریپلیسمنٹ ورکرز یعنی کہ سکیب ورکرز کے اوپر. اور یہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جگمیت سنگھ صاحب نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے ویسٹ بلاک میں کہ یہ بڑی ہسٹورک پروٹیکشن ہے جو لوگوں کو مل رہی ہیں, یونینائز جابز میں جو لوگ ہیں خاص طور پہ ان کو, اور اگر یہ بل جو ہے ہاؤس آف کامنز میں اسی سال, ویسے تو انہوں نے اب جو بھی جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ان میں پیش کرنا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو پاس بھی کیا جائے, تو بہرحال دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ اور جو کیبیک کے پریمیئر ہیں فرینکوا لگا, انہوں نے آج بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کیبیک کو فیڈرل گورنمنٹ $900 million دے گی تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے ریزیڈینشیل یونٹس بنائے جا سکیں. یہ جو ہے 23% آف ٹوٹل فیڈرل فنڈنگ ہے ٹو ایڈ 100,000 ریزیڈینشیل یونٹس ان کینیڈا ان 4 years. اور کیوبیک کہتا ہے جی کہ الانگ ود یہ جو 900 million ہے اس کے ساتھ جو پروونشل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے وہ اٹ ول ٹچ $1.8 billion, اور اس کی وجہ سے ہم 8,000 افورڈیبل ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں کیوبیک کے اندر بنا سکیں گے. اس کے اندر 500 جو یونٹس ہیں وہ بالکل ڈیڈیکیٹ کیے جائیں گے ان کے لیے جو کہ لوگ ہوم لیس ہیں. तो ये आज बहुत बड़ी वहां पे अनाउंसमेंट की है। ये पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर जनाब आज एक अजीब ही वाक्य से, पियर्सन पे तो मुझे कोई चीज अजीब नहीं लगती, कोई चीज अजीब नहीं लगती, पियर्सन तो लग रहा है कि जैसे पता नहीं टंडू अल्लाह यार का कोई हिस्सा है, जहां पे के जो कुछ होता है कि जी आज बेल्ट टूट गई है, आज जी तूफान हो गया तो इसलिए नहीं हम चल रहे, आज जी पखे ज्यादा हिल गए हैं, आज ये हो गया। अच्छा जी, आज जो है ट्रोनो पियर्सन के ऊपर ये हुआ है कि कोई हजारों ही पैसेंजर्स जो थे उनको ग्राउंड किया गया। ग्रेटर ट्रोनो एयरपोर्ट अथॉरिटी स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने कहा जी के जो एक टर्मिनल वन जो था जो बंद कर दिया गया था फॉर सेवरल आवर्स, अब उसको खोल दिया गया। हुआ ये है जी कि एक एयरलाइन का जो ग्राउंड हैंडलर था वो जो भी कोई पैसेंजर्स आ रहे थे उनको रॉन्ग डोर से कह रहा था जी बाहर जाने के लिए। अब वो जो डोर था उससे पता नहीं चल रहा था कि लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं, वो आने वाला दरवाजा था और उससे वो कह रहा था जाएं भी, तो उसकी वजह से फिर सारे लोगों को रोक दिया गया, सबको रोक दिया गया, इसलिए क्योंकि यूएस कस्टम्स और बाकी के जो थे उन्होंने कहा जी कि अब हमें देखना पड़ेगा कि किसकी कस्टम क्लियरेंस हुई है, कौन स्क्रीन हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हम निकलने देंगे। बहरहाल जी ये सारी जो ग्लिच थी ये खत्म की और फिर उसके बाद चीजें, यानी आप खुद
आवर्स एंड आवर्स होल एयरपोर्ट एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकॉज का टर्मिनल दूसरा है, ये टर्मिनल वन की बात है,
टर्मिनल वन
इसके अंदर जो है डिस्ट्रप्शन रहा,
डिस्ट्रप्शन रहा यहाँ जी। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे क्या क्या कुछ होता रहता है। एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज है जी और इसके मुताबिक जो है व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल अब रेडी हो गया है 4-आवर डेली ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए। यह आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम कॉन्स्टेंटली इनके साथ बात कर रहे थे टू गिव अ सेकंड पाथवे टू सिविलियंस। एक तो आपको पता ही है कि रफा के एरिया से एक्सक्यूज मी लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप निकल के जाएं, तो अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसी के जो स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने भी आज कहा कि ये बहुत जरूरी है और बाइडेन साहब जो है उन्होंने ऑलरेडी अर्लियर भी रिपोर्टर्स को बताया था कि हमने इसराइल को कहा है कि आप एटलीस्ट ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज 3 दिन के लिए रखें ताकि हम ये जो हमास के साथ जो हॉस्टेजेस हैं उनके पास उनके रिलीज की भी बात कर सकें। लेकिन जाहिर है कि बाइडेन साहब ने भी कंप्लीट सीज फायर की बात नहीं की, लेकिन फिर भी ये जो है थोड़ा सा सांस लेने की लोगों को जो है वो इजाजत देगी। पता नहीं अब 10,000 बंदा मार दिया उधर पैलेस्टाइन में, ओवर 10,000, अब पता नहीं और इनको कितने जो हैं वो। लेकिन मैं तो इनको लोगों को ब्लेम नहीं करती, किसी क्रिश्चियन कंट्री को, किसी यूरोपियन कंट्री को, ये सब का सब ब्लेम जो है मैं सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर डालती हूं कि इतनी यानी बेहिसी और बेशर्मी है कि इतने बड़े कंट्रीज हैं आप और इतनी आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, इतने आप के पास एक पावर है, इन्फ्लुएंस है दुनिया में, और आप उसको यूज नहीं कर रहे इस जुल्म को रोकने के लिए। एनीवेज, आज जनाब वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक कार्टून छपा है जिसके ऊपर दुनिया बेतहाशा भड़की हुई है। माइकल रैमिरेज ने जो एक कार्टून छापा है एडिटोरियल सेक्शन में, जो जिसको ओपिनियन पेजेस भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो एक कार्टून है जिसके के ऊपर लिखा हुआ है हमास शील्ड्स और उसमें एक आदमी है दिखाया हुआ एक मोटा सारा और उसने बांधे हुए हैं अपने आसपास बच्चे और उसके ऊपर मोटे मोटे लफ्जों से लिखा हुआ है हमास, उसकी जो आईब्राउज हैं वो रेज्ड हैं और नोज जो है बहुत ही कॉमिकली उसको चौड़ा सा मोटा सा किया गया है और उसके सर के ऊपर भी एक बच्चा है जो कि स्ट्रैप्ड है और फिर एक औरत भी साइड से देखती हुई वो जिसने सर ढांपा हुआ है तो शो कर रहा है, पैलेस्टीनियन औरत है वो भी कर रही है और फिर आपको जो है वो ऐसे लग रहा है कि ये कोई वेस्टर्न जो एरिया है उसकी कोई एक पिक्चर है जो दिखाई गई है। अच्छा, इसके ऊपर ये जब आया तो जो लोग हैं वो बड़ा भड़क गए क्योंकि उन्होंने कहा जी कि वेस्टर्न लीडर्स और इसराइल और उनका मीडिया कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि हमास ह्यूमन शील्ड्स यूज कर रहा है और ये बड़े अफसोस की बात है। साइड पे आपको एक पैलेस्टीनियन फ्लैग भी नजर आएगा। लोगों ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये इंतहाई रेसिस्ट किस्म का कार्टून है जो कि जस्टिफाई कर रहा है जीनोसाइड, स्पेशली जबकि हजारों ही बच्चे जो हैं ये जो इसराइल के अटैक में मारे गए हैं। डीह्यूमनाइजिंग पीपल, ये प्रूव करता है कि आपके इनजस्टिसेस जो हैं उससे आपको कोई दुनिया में फर्क नहीं पड़ रहा है। और वाशिंगटन पोस्ट जो है इसके ऊपर जलती का काम कर रहा है, यानी कि तेल पे को और जला रहा है और क्या कहते हैं क्या जलती का क्या काम करना,
तेल
तेल डाल रहा है जलने के ऊपर, तो वो उसका काम कर रहा है। एक ने लिखा जी कि जर्नलिज्म का काम यह होता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करे और प्रमोट करे इन्फॉर्म डायलॉग। ये जो इन्होंने कार्टून दिखाया है, आमिर जरा दिखाएं वो कार्टून फिर से। वो कह रहे हैं जी कि ये जो कार्टून दिखाया है ये इस तरह का कोई भी जो जर्नलिज्म के हाई प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ये शो नहीं कर रहा है। एक ने कहा जी कि ये बड़ा ही अजीब बात है कि ये जो आप सारा कुछ दिखा रहे हैं इसमें आपने पैलेस्टाइन या हमास को बुरा नेम देने की कोशिश नहीं की है, ये आपका अपना खुद का 19th century कॉलोनियल जो माइंड सेट है उसको शो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो लोग ज्यादातर मर रहे हैं वो बच्चे हैं और उन बच्चों को जो है इसराइल ने मारा है। तो आज बहुत ज्यादा दुनिया जो है इसके ऊपर भड़की और बेशुमार जो है इसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट को आज जो है लेटर्स मिले और कमेंट्स मिले। द गार्डियन की एक खबर है जी और इसके मुताबिक जो है यूएसए ने अब दूसरी बार अटैक्स किए हैं और स्ट्राइक्स किए हैं ईस्टर्न सीरिया के ऊपर। पेंटागन ने इसके ऊपर कहा है जी कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनके के साथ जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो सारा कुछ ये कर रहे हैं। इस सब की डिटेल्स जो है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने दी है और उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल हमास की जो वॉर है हमें लगता है कि ये और ज्यादा रीजन में बढ़ जाएगी और इसलिए हम जो है ये इराक और सीरिया के अंदर अपनी कोअलिशन फोर्सेज जो है इनको भी अब हम बढ़ाना चाह रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं। और इसके जवाब में जो इनके ऊपर अटैक्स हुए थे इन्होंने कहा लॉयड ऑस्टिन साहब ने कि 2 US F-15 फाइटर्स उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक्स किए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और हम बड़ा ज्यादा क्लियरली इसको बोल देना चाहते हैं कि अपने लोगों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटर ने कहा है कि ये जो कुछ भी ये स्ट्राइक्स की गई हैं इसके अंदर 9 लोगों की डेथ हुई है। यूएस के मुताबिक उसके 900 ट्रुप सीरिया के अंदर हैं, 2500 इराक के अंदर हैं टू प्रिवेंट आईसिस फ्रॉम रीसर्जिंग जैसे कि ये 2014 में हुआ था। अभी कुछ दिन पहले जो है एक आर्म ड्रोन ने अटैक किया है अल हरीर एयरबेस के ऊपर जहां पे के यूएस फोर्सेस नॉर्दर्न इराक में हैं और इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे लॉयड ऑस्टिन साहब। थोड़े दिन पहले सायरन्स भी यूएस एम्बेसी जो बगदाद में है ग्रीन जोन में उधर सुनाए दिए गए थे लेकिन उसके ऊपर कोई भी आके ना तो मिसल गिरा है ना कोई कैजुअलिटीज अनाउंस हुई है। कल भी यूएस MQ-9 ड्रोन जो थे उन्होंने कहा जी कि हूथीज ने जो ड्रोन भेजे थे हमने उसको मार गिराया है। तो मतलब ये फैलती जा रही है जो जंग है, लेबनान के बॉर्डर तक पहुंच गई है, हूथीज अब इसमें शामिल हो गए हैं, इराक और सीरिया और पता नहीं अब ये जो है और आगे कितनी जाएगी। 3 पैलेस्टीनियन राइट्स ग्रुप्स जो हैं जी उन्होंने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहा है, ये जो 3 राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं ये हैं अल हक, अल मीजान एंड पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ इसराइल के ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है बल्कि आप अरेस्ट वारंट्स निकालें इसराइल के प्रेसिडेंट आइजक हर्ज़ोग, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर यूएफ गैलेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। आईसीसी के लॉयर जो है इमैनुअल दाऊद उन्होंने कहा था जिस वक्त पुतिन साहब ने वॉर की थी यूक्रेन के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि चाहे यूक्रेन है चाहे पैलेस्टीनियंस हैं जो भी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर इन्वॉल्व हैं उन तमाम कल्प्रिट्स जो हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ऑन October 31st रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी इसी तरह की सिमिलर जो कंप्लेंट्स थी वो इसराइल के लिए की थी आईसीसी में और उसके लिए जो है अब ये राइट्स ग्रुप कह रहे हैं कि इसराइल को मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दैट इज गोइंग ऑन देयर। इससे पहले भी इसराइल के खिलाफ 2021 में भी इस तरह की कि ये जिनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस का उनको खत्म कर रहे हैं एक प्ली जो थी वो डाली गई थी आईसीसी में।
सामान्य नाजरीन इसके साथ ही बस 770 डायल टोन पर जो लोग सुन रहे हैं हमें उनसे गुजारिश है कि 6478724900 या eawaz.com पर जाइए वहां पर वॉच लाइव या लिसन लाइव पर जाके बाकी की सारी ताजा तरीन खबरें दुनिया में क्या हो रहा है वो आप सुन सकते हैं। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है।
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
جی سامعین ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ اب چلتے ہیں ہم بقیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب. شازیہ ملک جی.
جی ترکیہ کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے جی اس نے آج بڑی سلام کیا ہے یورپین یونین کی جو آج رپورٹ ایک آئی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ انکرا بالکل وہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے ای یو کا ممبر اسٹیٹ بننے کے لیے, یعنی کہ نہ تو وہاں پہ جوڈیشری ٹھیک سے کام کر رہی ہے, نہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, نہ تو ہیومن رائٹس ہیں, نہ تو فنڈامنٹل فریڈمز ہیں, اور نہ ہی پرنسپلز آف رول آف لا یہ فالو کر رہے ہیں. واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, سلام ہے یورپین یونین کو. اچھا ظاہر ہے کہ جس وقت یہ رپورٹ آئی ہے تو ترکیہ نے اس کو کیٹیگوریکلی اور بالکل انہوں نے اس کو جو ہے خارج کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ان فاؤنڈیڈ کلیمز ہیں, ان جسٹ کرٹیسزم ہے اور یہ بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تمام جو ہیں شرطیں ای یو کی فالو کی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ٹرکش جو منسٹری ہے اس نے کہا کہ یہ جو ایلیگیشنز ہمارے پہ لگائے گئے ہیں یہ ای یو کی انسینسیئرٹی اور ڈبل اسٹینڈرڈس کو شو کرتا ہے. جو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس آپ کہہ رہے ہیں بڑا کنٹینشیس ایشو ہے, یہ تو تمام یورپین یونین کی اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ترکی نے آج تک فالو نہیں کی تھی. اصل میں ای یو جو ہے وہ ترکیے سے بہت زیادہ ناراض اس لیے ہے کیونکہ جو طیب اردوغان صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایکیوز کیا تھا اسرائیل کو فار بہیونگ لائک اے وار کرمنل, اور انہوں نے ویسٹ کو بہت زیادہ بلیم کیا تھا کہ یہ جو کچھ پیلسٹائن کے اندر میسیکر چل رہا ہے اس کے پیچھے ویسٹ کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ بھی یہ سیریا سائپرس اور لیبیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے نکھار دیا تھا یورپین یونین کا جو سٹانس تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ظلم اور غلط کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گریس جو ہے اس کی بھی ترکیہ کے ساتھ لڑائی ہے آن ایجین سی جس کے اوپر یورپین یونین نے بڑا جو ہے وہ شو کیا تھا, کنسرن شو کیا تھا. سپٹمبر 13 کو ای یو نے ترکیہ سے کہا تھا کہ ای یو کا ایکسیشن پروسیس جو ہے وہ ریزیوم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز اپنی سوسائٹی میں لانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر غصے سے اردوغان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ترکیہ یورپین یونین کی تمام جو ہے وہ فنڈامنٹلز کو پورا نہیں کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بننے کے لیے انسسٹ کریں گے. تو آج کی بھی یہ رپورٹ جو آئی ہے یہ اسی چیز کو شو کرتی ہے مور اور لیس. اچھا جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی اکراز. اکراز آپ کو بتائیے شریعہ کمپلائنٹ سروسز دیتے ہیں. اگر آپ کو اور ان کے بارے میں جاننا ہے تو اکراز.com پہ جائیں. اور راجہ بادشاہ جی 1775 آف دیتے ہیں آپ کو اگر آپ کے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے, اور اگر آپ کو اور انفارمیشن چاہیے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. آل اسٹیٹ ایجنٹس ایجنسی کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا نمبر ہے 6472903773. اس کے علاوہ آنٹیریو کا لارجسٹ پاکستانی بفے ولیج ٹیسٹ, ان کی نئی لوکیشن جو ہے اوکویل میں آ گئی ہے, اور نیا ان کا جو ریسٹوراں ہے وہ ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ کے اوپر. اگر آپ کو آرڈر ڈالنے ہیں تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں ایٹ 9052262294 پہ. اور جناب نان ان کو بہت زبردست ان کا بھی نیا جو ریسٹورانٹ ہے وہ 5042 سیٹلائٹ ڈرائیو یونٹ فلمی 3 کے اوپر ہے, تو آپ ان کو فون کر سکتے ہیں ایٹ 4162858191.
اس کے ساتھ ساتھ چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال کی بات کرتے چلیں, 2935 ڈرو روڈ مسیساگا میں لوکیٹڈ ہے. 1200 سے 1400 لوگوں کی اگر پارٹی کرنی ہو آپ نے تو چاندنی وکٹوریا .ca پہ جا کے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. 6479653823 ان کا فون نمبر ہے. ڈینٹسٹری اور مسز ساگا دو لوکیشن سے سرو کرتی ہیں, دونوں برامپٹن کے علاقے میں. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر نازیہ رحمان کی. ڈاکٹر نازیہ رحمان آپ کے بیوی بچوں کے دانتوں میں کوئی بھی خرابی ہو تو بے دھڑک پہنچ جائیے ڈاکٹر نازیہ رحمان کے پاس. 9058721100 ان کا فون نمبر ہے. گرل اینڈ چک, بیسٹ گرل چکن ان ٹاؤن مساگا میں, 3525 پلاٹینم ڈرائیو Mississauga and 15 Montpelier Street in Brampton. www.grillandchick.com پہ جا کے ساری انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں.
جی پاکستان کے اندر پی ٹی آئی جو ہے جی اس نے آج ایک اپنا 24-point چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہے. آج کوئی تقریباً 45 منٹس کی میٹنگ بیرسٹر گوہر علی اور ڈاکٹر بابر آوان کی جو الیکشن کمشنر ہیں سکندر راجہ ان کے ساتھ ہوئی, جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کو بہت سارے چیلنجز ہیں, اور انہوں نے ایک ریٹن پٹیشن جو تھی وہ بھی ڈالی تھی, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ ہم کو ایک جو ہمارا بیٹ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہم کو دیں. और हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें ताकि ये अनसर्टेनिटी जो है ये सब खत्म हो सके। राणा सनाउल्लाह साहब जी आज बात कर रहे थे लाहौर में जर्नलिस्टों के साथ और उन्होंने कहा जी कि जो कोई भी PMLN की स्ट्रेटजी है वो तमाम हम लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और उसके अंदर उसको शामिल करना चाहते हैं। अलबत्ता जो 9 मई राइट्स के अंदर लोग शामिल थे उनके साथ हम बात नहीं करेंगे। हां, PTI के वो लीडर्स जो कि मई 9 राइट्स के अंदर नहीं शामिल थे उनके साथ भी हम बात कर सकते हैं। जरदारी साहब की कल की स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है, अगर वो कहते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लड़काना से आना चाहिए और लाहौर से नहीं आना चाहिए तो लेट पीपल डिसाइड कि वो कहां का जो है प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और ये उनका अपना डिसीजन है और लोग जो है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जिसको वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फॉर्मर स्पाई चीफ जो हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, उन्होंने बहुत सारे जी गलत एक्शंस लिए इमरान खान के जो बहुत क्लोज एड्स थे उसके खिलाफ, ये इस बात का खुलासा आज किया है इससे काम है पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट अलीम खान साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो पार्टी अभी फॉर्म हुई थी जून में इस साल उसमें उसकी एक पब्लिक रैली के साथ वो टेक्सला में एड्रेस उस सिलसिले की पार्टी उस सिलसिले की एक रैली से कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के जमाने में मेरी बेटी के खिलाफ जो है वो झूठे केसेस बनाए गए, इसी तरह जो पार्टी का पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन था उसके खिलाफ भी लगाया गया लेकिन असल में फायदे जो है उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी साहिबा उठा रही थी और उसकी फ्रेंड जो थी फरा गोगी और असल में तो नया पाकिस्तान वो बना रहे थे, इतना कुछ वो नया हासिल कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो कि अपने खुद की बच्ची से सिंसियर नहीं है वो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ लॉयल कैसे हो सकता है, और बुशरा बीवी जो थी वो तो अपने कॉफर्स को फिल कर रही थी और इमरान खान साहब रियासत मदीना रियासत मदीना की बात कर रहा था जो कि आपको बेवकूफ बना रहा था। 1 बिलियन ट्रीज के ऊपर उसने कहा जी हां जी हां जी, वो जो 1 बिलियन ट्रीज का जो वादा किया था लगाने का इमरान खान साहब ने उसके पत्ते जो है वो सारे बकरियां खा गई और गुलाम सरवर खान साहब का उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने PTI को छोड़ के इसको IPP को ज्वाइन किया और इसके बाद तरीन साहब ने भी पार्टी से बात की और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी असल में नया पाकिस्तान बनाएगी। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने आज वो थे वहां पे उज़्बेकिस्तान में और वहां पे वो ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ECO की जो हो रही थी मीटिंग ताशकंद में उसमें बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत क्लोजली ECO के साथ काम करना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यहां पर यह जो है CASA 1000 यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं और ट्रांस अफगान रेलवे है और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन टापी जिसको बोलते हैं उसके ऊपर हमको जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत है क्योंकि हम सब शेयर जो हैं अपने फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है उसको हमारा सेम विजन है उसको शेयर करने का और हम डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं इस रीजन के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बात करते हुए कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 5 की एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, IT एग्रीकल्चर डिफेंस प्रोडक्शन एनर्जी एंड माइनिंग, तो उसके अंदर जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो बहुत सारा फायदा लेगा। उन्होंने कहा जी कि ये तमाम की तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है उनको वी हैव ब्रॉट देम अंडर SIFC अम्ब्रेला और इसीलिए रेड टेप हमने काटा है ताकि आपकी चीजें जो हैं जल्दी से प्रोसेस हो सके। आज था जनाब 9 नवंबर और 9 नवंबर को होता है अल्लामा इकबाल जो हैं पोएट ऑफ द ईस्ट और फिलोसोफर, उनकी आज 146th बर्थडे थी। इस सिलसिले में जब शहबाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अनाउंस किया था कि 9 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे होगी, इसीलिए आज जो कैबिनेट डिवीजन की जो नोटिफिकेशन आई थी उसने तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफिसेज प्राइवेट ऑफिसेज इन पाकिस्तान को कहा कि 9 नवंबर को आप सब बंद रहेंगे। इकबाल जो थे वो पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में और उन्होंने एक जो सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया उसका आइडिया दिया था और उन्होंने कहा था जी कि मुसलमानों को अपनी जो स्पिरिट है जो पुरानी उसके अंदर आके और एक रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है और ये सब कुछ उन्होंने अपनी पोएट्री के थ्रू किया था, तलवार के थ्रू नहीं किया था। उनकी पोएट्री जो है बहुत सारी दुनिया की लैंग्वेजेस में जैसे कि स्पेनिश चाइनीज जापानीज इंग्लिश और बहुत सी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ है लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक आजाद मुल्क के अंदर सांस ले सकते लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले ही डाइड ऑन April 21st 1938। तो आज उनकी जो सर्विसेज हैं उनको आज सेलिब्रेट किया गया। हिंदुस्तान के अंदर जी RSS का जो माउथपीस है एक जो अखबार है पंच आनिया उसको आज बहुत ज्यादा कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसके अंदर जो है एक आर्टिकल आया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी जी जो हैं उज़्बेकिस्तान को क्यों इस वक्त विजिट कर रहे हैं जबकि 5 स्टेट्स के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं। आपको पता ही है कि इस वक्त हिंदुस्तान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये बड़े सीरियस किस्म की चीज है क्योंकि इसमें बहुत सारी बाहर की ताकतें जो हैं हिंदुस्तान को और बीजेपी को और मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश करेंगी। वो कहते हैं जी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी उस मीटिंग में क्यों गए हैं जहां पे कि खास तौर पे वो यूएस ऑफिशियल आया है जो कि ही हु इज पार्ट ऑफ द क्वाड्रेट जिसके के बारे में मशहूर है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दुनिया के अंदर लेकर आता है। वो कहने लगे कि उसमें ऑडिटोरियम में उन्होंने लिखा है कि जरा आप सीक्वेंस देखें, पहले कैनेडा एक्यूज करता है इंडिया को निज्जर साहब की किलिंग के लिए, उसके बाद यूएस उसको ज्वाइन करता है इस कंट्रोवर्सी में कहते हुए कि फाइव आईज इंटेलिजेंस है, उसके बाद साथ ही जैसे ही इंडिया ने रिटेलिएट किया तो कतर जो है वो इंडिया के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस देता है, फिर पाकिस्तान जो है हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर फायरिंग खोल देता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई हैं जम्मू और कश्मीर में जो कि बहुत ज्यादा पीसफुल हो गया था। तो ये तमाम की तमाम चीजें ये शो करती हैं कि मोदी जी का जो नेक्स्ट ईयर का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें फॉरन इंटरफेरेंस आएगी जिसकी वजह से उनको अपना थोड़ा ख्याल करने की जरूरत है। इंडिया के अंदर जनाब कांग्रेस और बीजेपी के अंदर पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक पोस्टर लाया जिसमें कि उन्होंने मोदी जी का नाम लिखते हुए कहा कि ये तो जी जुमला बॉय है एंड ही इज द बिगेस्ट लायर ऑफ ऑल। उसके ऊपर जो है बीजेपी भड़क गई, बीजेपी ने एक लेकर आए वो भी एक पोस्टर और उन्होंने उसके अंदर जो है राहुल गांधी के नाम के नीचे लिखा रावण। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरस। अब इसके ऊपर जो है कांग्रेस, तो आपको पता ही है कि रावण जो है उसको तो बड़ा बुरा समझा जाता है, महाभारत का वो बड़ा बैड कैरेक्टर है जो कि जिसने कि राम के साथ लड़ाई की थी और धोखा दिया था तो सीता जी के साथ बड़ा बुरा किया था। तो अब इसके ऊपर जो है कांग्रेस बड़ा भड़क गई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि आपने वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की है रावण का नाम लेके, क्योंकि रावण जो है वो ईवल को रिप्रेजेंट करता है और जिस आदमी के बाप और ग्रैंड मदर ने इतनी बेतहाशा जो है सेक्रीफाइसेस दी और उसके ग्रैंड फादर ने भी उसको असैसिनेट उनको जिनको किया गया था, तो आपने उन फोर्सेस को बढ़ावा दिया है जो हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहती हैं। हां ठीक है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब रोज के वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं और उनसे मुकर जाते हैं, वो एक नार्सिस्ट पर्सनालिटी है और उनको डिसऑर्डर है इस चीज का, तो ये कोई इतनी बड़ी जो है किसी को झूठा बोल देना बड़ी बात नहीं है लेकिन किसी को ईवल दिखाना बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंस जो आप कर रहे हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली एबनॉक्शियस। इसके ऊपर जाहिर है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका भी भड़क गई और उन्होंने कहा मोदी जी और जेपी नड्डा जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनको कहा कि ये आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिबेट करने के बजाय आप इतना गिर जाएंगे पॉलिटिक्स में और ये वायलेंस और प्रोवोकेटिव किस्म की ट्वीट्स आपके ऑफिशियल अगर हैंडल से आएगी तो फिर आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। आज जनाब हॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं उन्होंने फाइनली एक टेंटेटिव डील होने के बाद स्ट्राइक जो है जो महीनों से चल रही थी उसको खत्म किया। सैग एफ्ट्रा जो है ये स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, इन्होंने कहा जी के हम आज से अपनी स्ट्राइक जो है उसको खत्म कर रहे हैं। ये एक नया 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है विच इज वैल्यूड एट $1 बिलियन जिसमें के कहा गया है कि लोगों की मिनिमम सैलरीज को इंक्रीज किया जाए और स्ट्रीमिंग पार्टिसिपेशन दी जाए वो जो है अब हो गया है तो इसलिए हम जो है ये खत्म कर रहे हैं। प्रभास की फिल्म सालार और शाहरुख खान की दुनकी दोनों ही आने वाली थी December 22 को लेकिन फिर बीच में से र्यूमर्स आ गए थे कि शायद सालार पार्ट 1 सीज फायर जिसको के बना रहे हैं KGF के बहुत ही महान नायक किस्म के डायरेक्टर प्रशांत नील, उसके बारे में खबर आई थी कि शायद ये अपनी डेट चेंज करके मार्च 2024 में चले जाएंगे लेकिन आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सालार भी धुनकी के साथ December 22 को क्रिसमस से पहले रिलीज होगी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म आने वाली है जी Tiger 3 November 12 को, उस सिलसिले में अब इन्होंने अपनी फिल्म की प्रमोशन शुरू कर दी है और कैटरीना कैफ और सलमान खान ने आज अपने फैंस के साथ मुलाकातें की तो उसमें जो होस्ट थे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपको पता है आपकी फिल्म का इतना क्रेज है कि सबसे पहला शो जो है सुबह 6 बजे से लगना शुरू हो जाएगा, तो उसके ऊपर सलमान हंसे और उन्होंने कहा कि 6 बजे तो ठीक है लेकिन 7 बजे के बाद ना फ्लाइट पकड़ी जाती है और ना ही फिल्में, यानी उनका बोलने का मतलब यह था कि वो इतनी जल्दी सुबह उठ नहीं सकते हैं भाई, तो जो देखेंगे उनको सलाम है इतनी सुबह उठ के। और जनाब आज था बहुत ही धमाके खेज किस्म का मैच वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के अगेन के बीच में, और जो न्यूजीलैंड है उसने 5 विकेटों से इस मैच को जीता और अब वो तकरीबन जो सेमीफाइनल्स की क्वालिफिकेशन है उसके पांच उसके पास पहुंच गए हैं। 172 रन का टारगेट इनको दिया गया था जो इन्होंने 23.2 ओवर्स में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर जो है वो अचीव किया। डेवन कॉनवॉय ने 45 ऑफ 42, रॉचिन रविंद्रा ने 42, केन विलियमसन ने खैर आउट हो गए थे वो 14 पे वो बनाए, लेकिन डैरल मिशेल ने फिर 43 ऑफ 31 बनाए। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेटें ली, फर्गसन स्टेटनर रविंद्रा ने 2-2 विकेटें ली, तो आज बड़ा जबरदस्त इन्होंने मैच जीता। और जनाब एब्सोल्युटली अगर लास्ट न्यूज इज अबाउट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड अब तकरीबन चौथी पोजीशन पे पहुंच गया क्योंकि उसके पास पॉइंट्स